लोगों ने प्रभुपाद जी के अपराधिक चरित्र के संबंध में कुछ बतलाया। प्रतिवर्ष ही हम लोग विभिन्न विभिन्न रूप में प्रभुपाद जी के ऊपर में उनके अपराधिक चरित्र के संबंध में विचार करते हैं। प्रभुपाद जी यदि नहीं आते तो जिस रूप में आप लोग इस समय प्रचार विश्व में देख रहे हैं वैष्णव धर्म का, ये नहीं रहता। सहजिया बाबा जी लोग थे एकांत में भजन करने वाले, निर्जन किस लिए, उसमें भोग की प्रमुखता रहती है, कोई देखने वाला नहीं। मैंने कोई कहता है ब्रह्मचारी जब हम अकेले घर में रहेंगे भजन करें, तो वो भजन अकेले रहना माने क्या है, कोई देखेगा नहीं, पलंग पर सो करके दरवाजा बंद कर देंगे, सोए रहेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे सब करेंगे, कोई कबाट खुला रहेगा तो देख लेगा ये भजन, जब पूछेगा जी क्या करें तो भजन कर रहा। वैसे ही निजन में भजन करने वाले व्यक्ति भोगों की लालसा से अकेले में रह करके भजन करते थे, यथार्थ में भजन नहीं करते। महाप्रभु जी के जाने के बाद में विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जाने के बाद में धीरे धीरे वैष्णव धर्म में एक काला युग आया, अंधकार युग आया। भजन के नाम पर, महाप्रभु के भजन के नाम पर तरह तरह की व्यभिचार, तरह तरह की कुमार, ये सब का प्रचार होने लगा। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आई, कोई भी भला आदमी, पढ़ा लिखा सदाचारी व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव का नाम नहीं सुनना चाहता, सभी लोग घृणा करते थे। उनका काम ही था, जबकि आदमी मर जाता था तो वो लोगों को बुलाया जाता, वो कीर्तन करके ले जाते थे घाट तक और उनको कुछ रुपये मिल जाते थे 10-5। हम लोग जब यहाँ आए तो ऐसे ही प्रथा करने के लोग बुला रहे थे, ये आप लोग आइए हमारे, जो जब आदमी मर जाते हैं तो आप लोग हमारे साथ में चलें, ये तो समाज का काम है इसलिए आप लोग चलें। अरे वो तो बाबा जी लोग आते थे राधा कुंड से, गोवर्धन से, वृंदावन से, ये सब चलते थे काम, ये हम लोग बाबा जी नहीं, हम लोग बाबा जी नहीं हैं, बड़े बड़े घरों के शिक्षित लड़के एमए बीए और अच्छे से चरित्र, अच्छे अच्छे घरों के लड़के आए हैं भजन करने के लिए, मुर्दा जलाने के लिए नहीं आए, इसके लिए आप लोग सामाजिक काम कीजिए, समाज में इसकी व्यवस्था, हम लोगों को भजन करने के लिए आए। इस ऐसे धीरे धीरे वो फिर हम लोगों के पास में आए। हाँ, अपनी सहानुभूति से तो एक लड़के कभी चले जाते हैं वैष्णव, उनके लिए जाते हैं, वहाँ कीर्तन भी करते हैं, सभी कुछ करते हैं, किंतु पेशागिरी वाला कीर्तन नहीं। तो इसी तरह से वैष्णव माने ही यही था, वो लोग लाल कपड़ा भी पहनते थे और विवाह भी कर करके शादी, वो भी शादी कैसे, जिनके पति मर चुके हैं या पति है उनके साथ में रहते थे, वो भी विवाह टिवा नहीं, और पार के अभाव से भजन करते, चारों तरफ में सब लोग घृणा करते। अब कोई वैष्णव नहीं होना चाहता था भक्ति विनोद ठाकुर के समय में, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु, भक्ति विनोद ठाकुर आए और श्रील प्रभुपाद आए, इसका संस्कार किया, बड़े बड़े तेजस्वी ब्रह्मचारी लोग मठ में रहने लग गए, अच्छे अच्छे सदाचारी लोग मठ में रहने, बड़े बड़े विद्वान लोग आने लगे, अच्छे अच्छे घरों के तेजस्वी लड़के सब आने लग गए। धीरे 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 उनके द्वारा विश्व भर में उनको संन्यास दिया, संन्यास अभी जब नहीं हुआ था, जबकि वो मायापुर में थे उस समय में, एक दिन की बात है, उनके गुरु जी का नाम था गौर किशोर दास महाराज, यही सामने उनका चित्र है गौर किशोर दास। वो इतने भाग्यवान पुरुष थे, भूख लगने पर जमुना जी का मट्टी, राधा कुंड का मट्टी, गंगा जी की मिट्टी खा लेते थे, किंतु पीछे लोगों का अन्न नहीं ग्रहण करते थे, इसलिए कुछ दिनों में उनकी आंख मारी गई। किंतु इतने पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु नवदीप के प्राण किशोर गोस्वामी उस समय बंगाल भर में सबसे बड़े संस्कृत के विद्वान और भागवत के वक्ता माने जाते थे। एक दिन पाठ कर रहे थे, कौकुशोदास आज महाराज उधर से जा रहे थे, तो कुछ उनके कानों में आया। उन्होंने कहा जी गोस्वामी जी भूल पाठ कर बनना, लोग उनके धोखा दे बनना, अर्थरो जुगाड़ कराई सबसे बड़ो जीनिस न है। आ रहा है समझ में ना? अर्थरो जुगाड़ करना ही भागवत का काम नहीं है। शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति की बातें बतलाइए, रास-पास की बात मत बतलाइए, कि लोगों का चरित्र निर्माण हो, सदाचारी हो और सब प्रकार से सदाचार संपन्न हो, तब वो भगवान का भजन करें। आप लोग नाम में अपराध है इसको नहीं देखते। प्रभुपाद जी के भक्ति विनोद ठाकुर के पहले नाम में अपराध है, भगवान का नाम जैसे तैसे मांस खाओ, मछली खाओ, दुराचारी रहो, जैसे रहो वो करते चलो और भगवान का नाम करो, भक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने उस समय शिक्षा दिया, समाज का उसमें एक मोड़ दिया। और तब पहले लोग अकेले अकेले भजन करते थे, अभी भी राधा कुंड में जाएंगे, श्याम कुंड में जाएंगे, गोवर्धन में जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे, अकेले अकेले भजन करते हैं। और जब जरूरत होगी आपको, जब हम अपने घर में कीर्तन कराएंगे तो कहेंगे ये खोल के लिए 10 रुपया और एक करताल के लिए 5 रुपया और एक वैष्णव के लिए 10 रुपया, आने जाने का किराया, जितने दिन रहेंगे उतना का ये रोज किराया लगेगा। इस प्रकार से भजन करते थे। हम लोग जब यहाँ पर आए तो हम लोगों ने कहा हम लोग जो श्रद्धा से बुलाए गए उसके घर में जाएंगे, कीर्तन करेंगे और तुलसी का एक पत्ता दे दो, नहीं तो हम मठ से ले जाएंगे और अपना बिछा करके कीर्तन करके सुना करके हम चले आए। अभी तक भी हम लोग यदि कोई प्रणामी दे देता वो उसको हम मना ही करते हैं, यदि नहीं मानता चलता जाओ ठाकुर जी की सेवा। इस प्रकार से धीरे धीरे प्रचार किया। ऐसे ही प्रभुपाद जी ने उनके आदर्श, तो वो अकेले रहते थे वो बाबा जी लोग, प्रभुपाद जी ने देखा जी ऐसे तो ये वैष्णव समाज का गठन नहीं होगा, उन्होंने आश्रम बनाया। उसमें कहा जी जो श्रद्धालु व्यक्ति हो इसमें आएगा, गृहस्थ भक्त लोग सुने जैसे कि आप लोग सुनते हैं और सब सुनते हैं, त्यागी लोग इसमें रहें, स्त्रियां और ब्रह्मचारी एक साथ में न रहे, अलग अलग रहे, नहीं तो जहां पर आग रहेगी वहां पर घी डालने से वो जलेगा ही। बस आए महिलाएं सुने, अपने अपने घरों में चले जाए, अपने पति के पास में रहें, भाई के पास में रहें, पिता के पास में रहें। सदाचार हुए बिना, संपन्न हुए वे भजन नहीं होता, असदाचारी लोग क्या भजन करेगा। इसलिए ऐसी सब व्यवस्था अब ब्रह्मचारियों को रखा, जिसमें प्रभुपाद के यहाँ मायापुर में ही कम से कम सैकड़ों ब्रह्मचारी, सभी मुक्त नहीं थे, समय अनर्थ है, किंतु वहां पर ऐसी शिक्षा दी जाने लगी कि उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वेद वेदांत उपनिषद सब ऐसे ही सुनते सुनते सब उनको आए, सदाचार में स्थिर हो गए और फिर समस्त भारतवर्ष में उन्होंने प्रचार किया। उसी समय में जब उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, उनके गोकुशोदास बाबा जी महाराज थे, वो किसी को शिष्य नहीं बनाते थे, किसी को नहीं, इन्होंने प्रतिज्ञा की कि हम उन्हीं से शिष्य हम उनके बनेंगे। और इन्होंने कहा हम किसी को शिष्य नहीं करेंगे, खाना पीना छोड़ दिया मैंने, सवेरे सबको बतलाया। अंत में भक्ति विनोद ठाकुर के कहने से फिर उन्होंने इनको शिष्य बनाना ग्रहण किया, मंजूर किया, फिर उनको उन्होंने शिष्य बनाया। तो जिस समय मायापुर में थे उस समय में उन्होंने सुना एक रात में जो बाबा जी महाराज जी अप्रकट हो गए नवदीप में, नवदीप जहाँ हमारा मठ है देवानंद गौड़ी मठ, उसी के पास में एक रानी का धर्मशाला है, थी अभी भी है पुरानी स्थिति में, रानी चौड़ा ना रहे, रानी का धर्मशाला या क्या उसका, रानी चौड़ा एकदम ऊपर है वहाँ, नहीं हम लोग के मठ के पास ही में धर्मशाला, मैंने उसकी म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से, तो वहीं पर वो अप्रकट हो गए जहाँ पर भजन करते थे। प्रभुपाद सुन करके, प्रभुपाद के पास में ब्रह्मचारी किसी को भेजा गया, उन जाकर के प्रभुपाद को खबर दिया। उस समय में प्रभुपाद जी थे भक्त विनोद ठाकुर जी के भजन कुटी के में गोद्रम दीप, गोद्रम दीप से लौट करके आए मायापुर, मायापुर से सब ब्रह्मचारी को लिया जिसमें हमारे गुरु जी भी उसमें थे। कम से कम तो 20-25 ब्रह्मचारियों को साथ लेकर के और वहां पर धर्मशाला में आए। देखा जी वहां पर बड़ी लोगों की भीड़ हो रही है, बड़े बड़े बाबा जी लोग वहां पर उपस्थित हैं और भी लोग सब उपस्थित हैं। उसमें बातचीत चल रही थी जिस समय पहुंचे, जैसे कौन इनकी समाधि दे और कहां पर समाधि हो और कौन देगा। प्रत्येक बाबा जी चाहते थे कि हमारे आश्रम में इनकी समाधि हो। किस लिए समाधि हो? लोग आएंगे वहां पर कुछ पैसे चढ़ाएंगे। ये सिद्ध बाबा जी महाराज थे, यहाँ पर जाकर के कुछ ना कुछ चढ़ाएंगे। बहुत से लोग आजकल मंदिर बनाते हैं, विशेष करके गोवर्धन की दान घाटी में वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में। किस लिए बनाते हैं? लोग कुछ पैसा देंगे, चढ़ाव आएगा तो हमारा भी चल जाएगा। अधिकांश आजकल ऐसी प्रथा चल गई है, भजन करने से कोई संबंध नहीं। वहां पर चल रहा था इसी का विवाद, तब प्रभुपाद वहां पर पहुंचे तो प्रभुपाद जी ने सबकी बातें सुन करके प्रभुपाद जी ने कहा, मैं इनका एकमात्र शिष्य हूं। उन्होंने किसी को ग्रहण नहीं किया शिष्य, इसलिए मैं इनके अपराकृत शरीर को लेकर के मैं समाधि दूंगा, वो भी सार्वजनिक स्थान में दूंगा जहां पर सभी लोग दर्शन कर सके, गंगा के किनारे। उतने में एक पुद्दार जी थे प्रभुपाद के शिष्य, उन्होंने कहा जैसे ये हमारी जमींदारी के अंतर्गत में है, मैं गंगा के किनारे बहुत सुंदर एक जगह देता हूँ, वहीं पर इनकी समाधि। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है। तो उन लोगों ने कहा जितने बाबा जी थे आप इनकी समाधि नहीं दे सकते, क्यों? आप तो सन्यासी या बाबा जी हैं नहीं, तो बाबा जी नहीं है तो बाबा जी का आप कैसे समाधि देंगे, भले ही आप उनके शिष्य हों। हम लोग उनके शिष्य यद्यपि डायरेक्ट नहीं है किंतु हम लोग उनको अपना गुरु मानते हैं और हम लोग है बाबा जी, इसलिए समाधि हम देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो बाबा जी महाराज जी का शिष्य होना चाहिए और सदाचार युक्त होना चाहिए, वो समाधि उनको दे, हमको कोई एतराज नहीं, किंतु व्यक्ति सदाचारी होना चाहिए और वैष्णव धर्म में पूर्ण उसकी निष्ठा होनी चाहिए। तो सब लोगों ने कहा जैसे ये बात तो एक तरह से ठीक है, किंतु इसका निर्णय कैसे होगा जे इन्हीं का शिष्य है और यो सदाचारी है कि नहीं है। आज जैसे इसके लिए कोई बात नहीं है, मैं एक प्रस्ताव रखता हूं कि यदि प्रभुपाद का कोई बाबा जी महाराज जी का कोई शिष्य हो और एक महीने के अंदर में किसी स्त्री के साथ में उसका कोई भी संपर्क नहीं हुआ, क्योंकि बाबा जी महाराज तो त्यागी थे, आजीवन ब्रह्मचारी रह करके और वो बाबा जी थे सन्यासी थे, इसलिए भले ही त्यागी न हो कोई बात नहीं, बाबा जी भले ही नहीं रहे किंतु सदाचार संपन्न हो, एक महीने तक जिसका स्त्री से कोई भी प्रकार का संपर्क नहीं है वो बाबा जी कह दे यहां हम सदाचारी, तो आप कैसे समझेंगे? यदि झूठा कोई कह दे, किसी ने प्रश्न किया, झूठा कहे तो मैं कहता हूं हमको पूर्ण विश्वास है यदि ये कह देगा कोई भी तो हम मान लेंगे, किंतु एक शर्त है, यदि ये झूठ कहेगा कि मैं बाबा जी का शिष्य हूं और मैंने सदाचार संपन्न रहा हूं, किसी स्त्री से संपर्क नहीं है, तो मैं मान लूंगा और वो उनकी समाधि दे दे, कोई भी बात नहीं। दरोगा, कमिश्नर, पुलिस के सुपरिंटेंडेंट इत्यादि सभी लोग आ गए, बड़ी काफी जनता जुट गई। ये अभी कम उम्र के थे, छोटे छरहरे बदन के, बड़े तेजस्वी, शरीर बहुत बड़ा उनका था। उनका कहाँ चित्र है? वही वहां पर भी है, वहां पर भी है, बड़े तेजस्वी, सबसे उधर वाला बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने कहा जा अच्छा मैं मान लेता हूं, ये जो कह देंगे वही कर, किंतु देखो यदि कोई मिथ्या कथा बात कही और उनका शरीर छू करके शपथ करना पड़ेगा और यदि किया तो उसका सर्वनाश होगा, उसी समय मैं कह देता हूं ये हमारे ऊपर में विश्वास रखो, यदि उसने कोई असदाचार और झूठ बोला और उनका शरीर अपराकित छुआ और कहा जाए ऐसा बात है और झूठ कहेगा उसका उसी समय में सर्वनाश होगा, मैं ये कहता हूं। कहिए अब कोई भी कह दे एक महीना तक जिसको स्त्री से कोई भी प्रसंग नहीं है, कोई इत्यादि नहीं है, संबंध नहीं है, वो उठ करके खड़ा हो जाए और उनका शरीर स्पर्श करे, कोई नहीं है। अच्छा 15 दिन के लिए मैं कहता हूं 15 दिन कोई नहीं उठा। अच्छा 7 दिन तक कोई भी ऐसा यदि व्यक्ति हो सदाचारी तो उठ करके उठ जाए, कोई नहीं। अच्छा 3 दिन के लिए मैं कहता हूं 3 रात कोई नहीं उठा। बोले जब मैं यदि सारा जीवन यदि ब्रह्मचर्य रहा हूं, कभी किसी के प्रति हमारा ऐसा ना हो, मैं सदाचारी यदि हूं, मैं बाबा जी महाराज का शरीर लेकर के और समाधि के लिए चलता हूं। बस सब लोग धीरे 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 वहां से जितने थे वो सब भग गए और केवल प्रभुपाद रहे। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा जिसे बाबा जी महाराज का प्रकृत शरीर तुम लोग उठाओ, उन्होंने लिया। जब ले जाने लगे तो उनमें से कोई एक आदमी कहता है फिर देखिए आप लोग ले जा रहे हैं ठीक है ले जाइए, आप उनके शिष्य ले जा रहे हैं ठीक है, किंतु एक बात कीजिए, बाबा जी महाराज की अंतिम इच्छा थी, मैं भी वहां पर था, बाबा जी महाराज ने कहा था ये मैंने भजन नहीं किया, सारा जीवन बेकार का गया, कृष्णचंद्र की महाप्रभु जी की कृपा नहीं हुई, इसलिए एक बात करो, मैं धाम में था किंतु धाम में नहीं था, धाम के ऊपर में था, धाम के साथ में स्पर्श नहीं हुआ, मरने के बाद में मेरे पैर में रस्सी बांध करके और जमीन पर खींच करके ले जाना जिससे हमारे समस्त शरीर में ब्रज की फूली लग गई, उन्होंने बाबा जी ने कहा था। इसलिए मैं कहता हूं कि एक रस्सी मंगा करके उनके दोनों पैरों को बांध करके और उनको धाम के रज में खींच करके घाट पर लिया जाए या समाधि दे। प्रभुपाद जी फड़क गए, जिसके श्री अंग को कृष्णचंद्र और राधिका जी स्वयं अपने हाथों में लेकर के जिसे आनंद के मारे मत हो जाते हैं, जिनके शरीर को हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं अपने कंधे पर लेकर के बहन करके समाधि दी, आज उस शरीर को मूर्ख लोग जो जानने वाले नहीं है अपराकृत जिनका शरीर है और उनको ऐसा विचार रखते हैं ये भजन से इन लोगों का कोई नहीं। फिर उस विचार को कैंसिल करके अपने सियंगों में ले गए और वहां पर गंगा के किनारे में वहां पर समाधि दी गई। हमारे गुरु महाराज जी ने समाधि में बहुत काम किया। इसके कुछ दिनों के बाद में वहां पर बाढ़ आई और बाढ़ में वो कटने लगा जगह। प्रभुपाद जी ने हमारे गुरु जी को आदेश दिया, गुरु महाराज जी कुछ ब्रह्मचारियों को लेकर के गए और फिर उस जब उसको समाधि को खोद कर उनके अपराकृत शरीर में जो कुछ था वो लेकर के, तो हड्डियां रहती हैं उसको लेकर के और मायापुर में राधा कुंड के ऊपर तट पर और उसको लेकर के समाधि दी, अभी भी वहां पर विराजमान है। ऐसे तेजस्वी पुरुष ये महापुरुष थे, साधारण नहीं थे। इसी विग्रह के संबंध में एक समय मायापुर में कोई व्यक्ति आए, वो थे रहने वाले खेतुरी धाम के। खेतुरी नाम सुना है, नरोत्तम ठाकुर। वहां पर उन्होंने 6 विग्रह स्थापित किया था, राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा रमन, राधा दामोदर, राधा बल्लभ, ब्रजमोहन इत्यादि 6 विग्रह, राधा कांतिया क्या वहां पर सब। और उस सभा में जिस समय वो प्रतिष्ठा हुई उस समय श्रीनिवासाचार्य जी थे, पुरोहित का काम किया। अरे ठहरो, जो कहते हैं पहले सुनो तो। विग्रह प्रतिष्ठा का आचार्य का काम किया, सब कुछ विग्रह प्रतिष्ठा जैसे करते हैं ना, मंत्र विधिवत सब तंत्र इत्यादि से लेकर के, ये श्रीनिवास आचार्य ने किया। उस समय में सबका पौरोहित्य, सबका सब कामों का किया ये क्या जानवादी, वो सबकी ईश्वरी माने गुरु तत्व थी, उनके क्या सभापतित्व में ये सब काम हुआ। श्रीनिवास आचार्य जैसे जब भागवत पाठ करते थे तो कृष्ण सुनने के लिए आ जाते, नरोत्तम ठाकुर कीर्तन करते थे तो चैतन्य महापुरुष परिकरों के साथ में कीर्तन करने लगते थे, ऐसे ये लोग थे, साधारण नहीं। उन्होंने प्रतिष्ठा की और इन्होंने खुद प्रतिष्ठा की कराई और जहन्नवा मैया थी वहां पर और सब कितने बड़े बड़े वैष्णव लोग उस समय के बीरचंद्र प्रभु इत्यादि जितने बड़े बड़े वैष्णव लोग थे वहां पर उपस्थित। कालांतर में 100-200 वर्ष के बाद में जब मंदिर पुराना हो गया प्रभुपाद के समय में, कितने महाप्रभु जी के बाद में 100 उन्हीं के समसामयिक थोड़ा सा नौतन ठाकुर महाप्रभु जी को देखा नहीं था ना? महाप्रभु जी के जीव गोस्वामी के बाद में ये हुए, तो जीव गोस्वामी के समसामयिक हुए ये, तो उस समय करीब करीब आज से 400 वर्ष पहले जब प्रभुपाद जी थे, 400 वर्ष पहले का मंदिर बना हुआ था वो मंदिर पुराना हो गया, ऊपर से ईंट गिर गया और शिव विग्रह का कुछ अंग हानि हो गई है ना। अब बाबा जी लोगों ने या सहजिया या स्मार्ट ब्राह्मणों ने, ये तुम लोगों को भी बतला रहा हूं ये तुम लोग समझो और ऐसे ही विचार करना, तो वो विग्रह के अंग भंग हो गए हैं, दो एक के हाथ सर टूट गया या कुछ ऐसा हुआ, तो वो आदमी आया, उसका जो हेड पुजारी था और ब्राह्मणों के द्वारा पूजा हो रही थी, वंश में अब शायद वैसा कोई भक्त नहीं, इसलिए वो पेट पर ब्राह्मणों के द्वारा वो पूजा होता था, माने जो कुछ महीना उनको दे दिया गया, जैसे अभी कृष्ण जन्मभूमि में है सरकारी जितने भी मंदिर में वो पेड़ है, हमारे जैसा नहीं जो जीवन अर्पित कर दिया है कृष्ण की सेवा के लिए और सेवा कितना उज्ज्वल है, वो सब जगहों में पेड़ में नहीं होता, उनको ठाकुर जी का प्रणामी भी कुछ चोरी करके रख लेंगे, कुछ भीतर बक्से में देंगे और कुछ नहीं देंगे और लुका छिपा करके ले लेंगे, ठाकुर जी की सेवा नहीं करेंगे, वहां पर चावल दाल रोटी पूड़ी पकवान ये सब भोग नहीं लगता, वहां पर लगता है मिही दाना की होती है कोई इलायची दाना नकुल दाना ये भोग होता है और कुछ भोग नहीं होता, ठाकुर जी उनके खाते नहीं है, वो पत्थर की मूर्ति है स्टेचू है, जनता तो जाती है देती है ठाकुर के रूप में किंतु उन पुजारियों के लिए व्यवस्थापकों के लिए वो केवल पत्थर की मूर्ति है, इसलिए ये सब चीजें नहीं देते, इसलिए हम लोग जाते भी नहीं, यहाँ ठाकुर जी का सुंदर भोग राग की व्यवस्था नहीं है, विग्रह को भगवान के रूप में नहीं व्यवस्था की जाती, वहां पर हम लोग नहीं जाते, दुख होता है देख करके, हम लोग जाते हैं बल्कि वहां आदि केशव में जाकर के उनकी पूजा उनका प्रणाम इत्यादि सब करते हैं, किंतु यहाँ पर देखते हैं कि इलायची दाना से देते हैं, वो भी कभी नहीं देते होंगे, शोख बना देते हैं बस, जैसे कि स्टेचू का शोख होता है, विधिवत मंत्र के द्वारा जो दीक्षित व्यक्ति है ब्राह्मण वैष्णव है उसके द्वारा पूजा नहीं होती, कोई भी जाति का पीला कपड़ा पहन लिया कोई मंत्र तंत्र से सरकार नहीं, दिन भर ये देखते हैं कि वो प्रणामी का बक्सा में से कोई पैसा न निकाले, ये देखते हैं ठाकुर जी को नहीं देखते, तो वहां का वैसा ही पुजारी था, वो आया उनसे बोला प्रभुपाद जी से ये वहां के विग्रह खंडित हो गए हैं कुछ, इसलिए मैं आपके पास आया कि क्या व्यवस्था करनी चाहिए, वहां के बड़े बड़े ब्राह्मणों पंडितों ने तांत्रिकों ने ये दिया है कि ठाकुर जी को जल्दी से जल्दी गंगा जी में गिरा दो है तो, और नई मूर्ति लेकर के वहां पर प्रतिष्ठा करो नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश होगा, और भी सब लोग कहते हैं जैसे टूटी हुई मूर्ति है इसको फेंक दो, क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी ने कहा इस सब में दिया है कि विग्रह न हो तुम्हें साक्षात विग्रह, ये विग्रह नहीं है मूर्ति नहीं है साक्षात बजेंद्र अंदर है, जो नहीं देख पाता उसका दुर्दैव है अनाधिकारी व्यक्ति है किंतु है यही ठाकुर जी, तो सोमनाथ में तोड़ दिया तो ठाकुर जी कहां रहे, तो ठाकुर जी अंतर ध्यान होना नहीं जानते हैं, ठाकुर जी में कोई शक्ति नहीं है उनको वंचित नहीं कर सकते, जरासंध काल जमन कृष्ण को मारने आया मार दिया नहीं मार सकता, यदि ऐसा ही होती तो फिर उनकी सेवा आज कैसे, यदि कृष्ण उसको मर गए या टूट गए खत्म हो गए तो इनका फिर पूजन कैसे हो रहा है और अनित्य काल होता है, विग्रह का तत्व तो कुछ निराला है साधारण आदमी नहीं समझे, तब ये समझ लो किसी विग्रह देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ हम उनको नहीं देख रहे हैं। इसलिए जिस विग्रह को नरोत्तम ठाकुर जी ने प्रकाश किया, जिसकी प्रतिष्ठा कराई वो नित्यानंद प्रभु की जाह्नवा देवी के अधिनायकत्व में हुआ, और जिसकी प्रतिष्ठा स्वयं श्रीनिवास आचार्य जैसे व्यक्ति ने की, भक्त ने, और जहां पर समस्त देश के भक्त लोग वहां पर आए थे बड़े बड़े, तो वो तो विग्रह है, टूट नहीं सकती, फूट नहीं सकती वो मूर्ति, वो नित्य है। तब हम लोग क्या करें? तो ऐसा करिए, सोना है, चांदी है, धातु है कोई, उसे श्री अंग को ठीक करा दीजिए उसके द्वारा, जैसे शालग्राम के हाथ दिखला दिए जाते हैं, देखा है, या गिरिराज जी के हाथ पैर सब देखते हैं कि नहीं, और पहाड़ भी दिखला दिया जाता है, हाथ पर धारण कर रहे हैं ऐसे मालूम होता है। इसी तरह से श्री अंग को अष्ट धातुओं के किसी चीज के द्वारा उसको फिर से अंगराग कराइए। अंगराग माने क्या? जगन्नाथ जी का जैसे अंगराग होता है, ठाकुर जी का यहां पर भी अंगराग होता है, श्रृंगार होता है, वो श्रृंगार करा दो, बस सभी ठीक हो जाएगा। यदि किसी का पिता बूढ़ा हो गया और उसका हाथ टूट गया मान लो, तो पिता को क्या करेंगे? यमुना जी या गंगा जी में बहा दो, क्योंकि उनका हाथ टूट गया, और दूसरा पिता देख बना लो। किसी स्त्री का पति का पैर टूट गया चलते चलते, है ना, और पैर को कटवाना पड़ा, तो स्त्री भला उस पति के साथ में कैसे रहेगी? इसलिए उस पति को जीवित ही गंगा में उसको दाह करा करके और एक नया पति और बना लो। ऐसे सब उदाहरण दिए, आ रहा है समझ में? ऐसा मत करो खबरदार। इसलिए ठाकुर जी यदि शुद्ध रूप में प्रतिष्ठित हैं किसी वैष्णव के द्वारा, गुरु के द्वारा, तो इस प्रकार से आप करना चाहिए। आज मैं देखा इसमें, उसमें मार्क भी लगा दिया, तुम लोग अच्छी तरह से देखना, पढ़ना सब या देखा है, तो ये सब के अनुसार में हम लोगों को चलना चाहिए। तो शिव विग्रह के संबंध में ऐसा उनका विचार, हमारे गुरु जी का भी है ऐसा विचार, वैष्णव मात्र का, शुद्ध वैष्णव का ऐसा ही। एक समय में कालीघाई नामक स्थान में यह विचार हुआ, बंगाल में जितने ब्राह्मण लोग थे वो तंग आ गए प्रभुपाद के प्रचार से और भक्ति विनोद ठाकुर के प्रचार से, उनकी रोजी रोटी मारी गई। यहां पर भी हम कभी कभी देखते हैं कि लोग गृह प्रतिष्ठा के लिए, विग्रह प्रतिष्ठा के लिए, घर में नए घर में निर्माण होने पर गृह प्रवेश के लिए किसी लड़के को जनेऊ देने के लिए हम लोगों के पास में आते हैं। हम लोग तो ब्रह्मचारियों का सब करते हैं, इसलिए हम लोगों के पास में आते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास में आने से कोई खर्चा भी नहीं होगा और काम भी बड़ी ठीक से हो जाएगा। तो यहाँ के कुछ ब्राह्मण लोग हमारे हम लोगों पर बिगड़े हुए, यद्यपि मैं नहीं जाता, हम लोग कह देते हैं भाई ब्राह्मणों से करा लो, उनकी रोटी रोजी मत छोड़, उनको यदि हम जाएंगे भी तो उनको बुला करके जो दक्षिणा है उनको दे दो, तो भी हम लोगों को में बिगड़ते हैं। प्रभुपाद जी ने किया, धर्म का प्रचार किया, उन्होंने कहा जो ब्राह्मण भगवान का भक्त नहीं है, भगवान की पूजा नहीं करता, विशेष करके राधा कृष्ण को एकांतिक रूप में मानता, राम को नहीं मानता, एकांतिक रूप में उनकी नहीं सेवा करता, तो उस ब्राह्मण के द्वारा कराया हुआ सब कुछ निष्फल हो जाता है। जो ब्राह्मण सदाचारी नहीं है, ब्रह्म तत्व को नहीं जाता जानता, कोई आचरण नहीं करता, सदाचार अवलंबन नहीं करता, भगवान का नियमित रूप से भजन नहीं करता, केवल धागे बांध करके ही ब्राह्मण बन जाता है, ऐसा ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्मने पर